Hi everyone, in our previous podcast of Mythology Part 2, we have discussed about many things of the Mahabharata and Ramayana. Today, I welcome you all to this third episode of Mythology. In today's episode, we will talk about some more beautiful ideas from our Shastras. So, enjoy the episode. And in today's podcast is a joint podcast, and we are having Jaideep with me. So I would like to invite Jaideep to discuss something more about this whole concept.
Thank you, Amlan. I'm very happy to join you with the podcast. So let's start. So we never make the spiritual and mythological practical. हम उस चीजों को लोगों के सामने एक आध्यात्मिक और एक इम्प्रैक्टिकल वे में प्रस्तुत करते हैं बट आज के ज़माने में हमारा एक ही एम होना चाहिए इज टू प्रेजेंट दीज माइथोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल हिस्ट्री इन अ प्रैक्टिकल वे टू द ऑडियंस सो दैट दे अक्वायर सम नॉलेज फ्रॉम इट एंड यूज इट टू गेन वेल्थ और सक्सेस इन डेली लाइफ सो मैं एक और चीज़ के बारे में यहाँ पे बात करना चाहूँगा लेसन्स एंड बेसिक फिलोसफीज ऑफ साइंस एंड बिजनेस फ्रॉम आर एपिक्स एंड एंशिएंट बुक्स So the point I'm trying to make is that we can learn many philosophies from our ancient books. What does philosophy mean? Philosophy is considered as the study of some fundamental and real life occasions. For example, according to our shastras, ek insaan ke paas do drishti hone ki baat ki jati hai. Ek hoti hai divya drishti aur ek hoti hai normal drishti. So we can consider this as drishti means normal way of looking to the world and divya drishti means the fundamental way or scientific way of looking around. For example, एक normal बच्चा एक aeroplane को देख के क्या कहेगा कि आसमान में एक aeroplane उड़ रहा है बस वो उसे देखेगा और खुश हो जाएगा But एक scientific knowledge वाला बच्चा या फिर एक बच्चा जो कि curious है अपनी life के बारे में अपने surroundings के बारे में वो एक एरोप्लेन को देख के सिर्फ यही नहीं सोचेगा कि हवा में एक एरोप्लेन उड़ रहा है वो इसके पीछे का विज्ञान यानी फिजिक्स जानने की कोशिश करेगा वो समझने की कोशिश करेगा कि ये आसमान में इतनी देर तक कैसे उड़ पा रहा है सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड्स इट इज डिस्क्राइब दैट अ पर्सन हैविंग अ डीप इनसाइट ऑफ दिस दिव्य दृष्टि कैन डाइव मोर इनटू द कोर ऑफ एनी सब्जेक्ट He or she wants to make career. Doesn't matter if science or business can achieve something more as compared to those who just do all the things in a normal way. So, back to Amlan.
Thank you, Jaideep. So, for our audience, in my previous podcast of Mythology, हमने महाभारत और रामायण के बारे में बहुत बात कर ली है. So today I am introducing you a new concept that is हम एक्चुअली आज मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा हम मैं थोड़ा सा मतलब लाइक यू नो महाभारत एंड रामायण 6000 ईयर्स बैक था तो आज हम नॉर्मल इंडियन मेडिवल हिस्ट्री को जाते हैं उसमें भी बहुत सारे हमारे माइथोलॉजी के कॉन्सेप्ट हिडन हैं तो आज मेनली हम उस गुरु और ये इंडियन गुरुकुल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूँगा So we all know that India had some world-class universities during the medieval period. So their students were taught mathematics, science, everything. वहाँ पे विज्ञान सब कुछ पढ़ाया जाता था और सबसे कमाल की बात यह है कि उस टाइम पे almost 100% citizens were educated. वहाँ मतलब आज भी हमारे देश में इतना 21st century में आके भी 100% लिटरेसी रेट नहीं है पर उस टाइम पे 100% लिटरेसी रेट था और सबसे कमाल की बात यह है कि दे वर नॉट जस्ट एजुकेटेड बट ईच ऑफ देम हैड सम स्किल्स इन देम इन ऑर्डर टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट और जस्ट टू मैनेज देयर ओन फैमिली नीड्स और एक फैक्ट है इन चीज़ों के बारे में कि उस टाइम पे एटलीस्ट फॉर द नॉर्मल बेसिक एजुकेशन सबको वो बेसिक एजुकेशन का राइट मिलता था रिगार्डलेस ऑफ कास्ट क्रीड जेंडर और इकोनॉमिक स्टेटस इट डजंट मैटर कि वो उस टाइम पे कोई राजकुमार था या नॉर्मल इंसान था. हम सब ने देखा है कि बिफोर 1947 एंड ऑल्सो मेनी ईयर्स आफ्टर आर इंडिपेंडेंस कि हमारे यहाँ गर्ल्स को और बहुत सारे मतलब छोटे कास्ट के लोगों को नहीं दिया जाता था एजुकेशन का राइट. बट वी आर टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन बिफोर 2500 ईयर्स एगो. बट उस टाइम पे ऐसा कुछ डिस्टिंक्शन नहीं था. हम थोड़ा सा वो स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं. तो वो स्ट्रक्चर में एक बेसिक लेवल था, हम सब उसके बारे में जानते होंगे. उनको वो गुरुकुल कहा जाता था, हॉस्टल टाइप का था. गुरुकुल से हम छोटा सा नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता था, स्टूडेंट्स को कुछ और भी सिखाई जाती थी, लाइक हाउ टू हैंडल सिचुएशंस, डेली लाइफ में कैसे आगे बढ़ते हैं और बहुत कुछ रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में भी स्टूडेंट्स को सिखाया जाता था. और हमारे पास विहार थे फॉर सेकेंडरी एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज फॉर एडवांस एजुकेशन. हम सब ने नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में तो सुना होगा, पढ़ा होगा हिस्ट्री में. तो वहाँ पे होल वर्ल्ड से फिलोसोफर्स और गाइड्स आते थे नालंदा और तक्षशिला या फिर इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी शारदा पीठ. तो यहाँ सब चाइना, तिब्बत और उस टाइम पे वेस्ट से भी बहुत सारे लोग आते थे हमारे यहाँ पढ़ाई करने के लिए. और सबसे ब्यूटीफुल एस्पेक्ट और एक ये है कि ये सारे इंस्टीट्यूट स्टेट फंडेड थे. लाइक द स्टूडेंट्स वेर नॉट पेइंग अ सिंगल पेनी. सब कुछ स्टेट फंडेड था. लाइक उस टाइम पे जो भी राजा थे वो सारी यूनिवर्सिटीज और गुरुकुल को फंड करते थे. किसी को भी कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती थी. और बहुत लोग बोलते हैं कि इंडियन हिस्ट्री जो है वो माउथ टू माउथ हिस्ट्री है, ज्यादा रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है. बट प्रैक्टिकलिटी ये है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी हैड मिलियंस ऑफ बुक्स इन इट्स लाइब्रेरी. बट वी ऑल नो दैट इट वॉज लेटर ऑन डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी. तो या ऑब्वियसली वो सारे रिटन रिकॉर्ड्स को खत्म कर दिया गया था. तो गुरुकुल्स में इंडिया का एक और एक मतलब एक ब्यूटिफुल रिलेशन को दिखाया गया है, दैट इज गुरु शिष्य रिलेशन. तो थोड़ा सा हम गुरु के विजडम के बारे में बात करते हैं. गुरु इज अ मैन ऑफ विजडम. एक जो गुरु है वो बस टीचर नहीं है. एक गुरु इज नॉट जस्ट अ मतलब क्लास टीचर इन स्कूल जो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं या लेक्चर्स देते हैं. तो एक बुक है हमारा जो चाणक्य इन यू बाय राधाकृष्णन पिल्लई. उस बुक में एक लाइन है कि अ गुरु टीचेस अ सब्जेक्ट नो डाउट बट ही हैज अ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड द स्टूडेंट फ्रॉम कंसर्न्ड सब्जेक्ट टू गॉडहुड. तो गुरु का ड्यूटी बस एक स्टूडेंट को पढ़ाना नहीं होता था, उसको लाइफ के लिए प्रिपेयर करना भी होता. तो हियर इन आवर कंट्री एक्चुअली वी कंसिडर गुरु एज द ग्रेटेस्ट मेनली इन इंडिया. इसके दो रीजन है. पहला तो मतलब फेम और सारा सक्सेस आर भारत हैड इन आर एंशियंट टाइम्स वॉज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ आर ग्रेट किंग्स but also the man behind them, the kingmaker or the guru of king. Wo guru ek matlab normal insaan ko ek successful king or king matlab ek successful warrior and a successful politician wo banne mein help karte the guru. So modern day lives mein ye sare hamare ancient texts se jitne bhi values hain sab kuch hum ek normal student ko guide kar sakte hain ek successful insaan banne. So now I would like to ask Jaydeep to continue more with this.
Yeah, thank you. So, बहुत सारे beautiful ideas हैं, business ideas, जिनको मैं share करना चाहूँगा जो कि हमारे शास्त्रों में से ही हैं. हमारे शास्त्र में कहा गया है यज्ञ और आहुति के बारे में. Many of us in the modern day consider these things as supernatural and mostly inhuman. But today we will talk about the practical business idea from this concept of yagya. सबने सीरियल वगैरह में ऑफ कोर्स देखा होगा कि कैसे यज्ञ में आहुति दी जाती है, मतलब अपने पैसा, अपना रिसोर्सेस त्याग किया जाता है इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग ग्रेट और समथिंग बिग. एक ब्यूटिफुल एक्सप्लेनेशन इस चीज का दिया गया है कि इन ऑर्डर टू अचीव बिग यू मस्ट डोनेट योर टाइम योर हार्ड वर्क, जो कि एक यज्ञ में भी किया जाता है, किसी बड़ी चीज को की आशा में यज्ञ किया जाता है, तो उसमें धन दौलत और घी चलाया जाता है, वो उसकी आहुति होती है। सो इन शॉर्ट, यज्ञ के वेल्थ को बिजनेस में इन्वेस्ट बोला गया है कि आप अपना वेल्थ इन्वेस्ट कीजिए इन सर्च ऑफ समथिंग बिग, इन रिटर्न ऑफ समथिंग बिग। वहां देवताओं को और यहाँ पे कंज्यूमर्स को रिलेट किया गया है कि वही चीज तुम प्रोड्यूस करो जो कंज्यूमर की नीड हो, जिसे कंज्यूमर खरीदे, जिसे कंज्यूमर यूज करे। तो इस तरह कई चीजों में बिजनेस फिलॉसफीज भी डिराइव किया जा सकता है अपने एंशिएंट टेक्स्ट से। सो आई विल गिव इट बैक टू अम्लान।
थैंक यू जयदीप। सो आज के पॉडकास्ट के लिए मेरा ये लास्ट सेशन होगा, तो यहाँ पे हम कुछ दो तीन पॉइंट्स की बात। तो मैं आफ्टर रीडिंग सम फ्यू स्पिरिचुअलिस्टिक बुक्स, एक बहुत कमाल की चीज मतलब समझने को आई कि इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग ग्रेट यू हैव टू इंटेंसिफाई द इंटेंस। हम हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे, इंटेंसिफाई द इंटेंस का क्या मतलब है। मतलब इंटेंस मतलब आप अपना कोई भी गोल ले लो या कोई भी चीज ले लो जिसको आप सोचते हो अचीव करने का ट्राई करते हो, उस चीज को आपको इंटेंसली सोचना है, लाइक एक अटर सीरियसनेस के साथ उस चीज को सोचना है। तो वहां पे पता चलता है कि द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल एंड अ मोर सक्सेसफुल पर्सन इज दैट बोथ ऑफ देम हैड ड्रीम्स एंड बोथ ऑफ देम हैड इंटेंशंस, बट मे बी द नॉर्मल पर्सन वर्क हार्ड of his intentions in an intense manner, sorry, not the normal person, but the successful person us intentions ko ek intense manner mein khud pe liya aur usne us par work kiya, but ek normal person ne ye cheez nahi ki. To explain karein to jab tak intention ka seriousness ek certain level tak nahi jayega to wo intention complete nahi hoga. Aap sab Jay Shetty ko jante honge, to unka ek book hai Think Like a Monk. तो उस बुक में उन्होंने ये सिग्निफाई किया है कि गीता कुरान या फिर आप कोई भी रिलीजियस नहीं बोलूंगा स्पिरिचुअलिस्टिक टेक्स्ट ले लीजिए कोई भी रिलीजन का, उन सब का मोटो एक ही होता है दैट दे आर प्रमोटिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ लिविंग विद द स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट कंपैशन एंड सर्विस एक्सक्लूडिंग ऑल आर एक्सटर्नल एनवायरमेंट और द फैक्टर्स। तो इसका हिंदी में मतलब हम समझने की कोशिश करें तो सारी चीजों का मतलब यही होता है कि हम अपने कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं विद द स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट एंड कंपैशन बस, पर हम उन चीजों से जुड़ नहीं रहे हैं और कंपैशन रख रहे हैं अपने हाथ में। तो सिंपल आइडिया ये है ये सारे डिस्कशन का कि जब हमें कोई डिजीज होता है या बॉडी पेन होता है तो हम क्या करते हैं, हम हॉस्पिटल जाते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब हमें कोई इमोशनल मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल मतलब प्रॉब्लम्स के लिए साइकोलॉजिस्ट हैं, बट नॉर्मल कभी कभी इमोशनल छोटे मोटे ब्रेकडाउन भी होते हैं डेली लाइफ में, छोटे मोटे इमोशनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो उन चीज़ों के लिए हम ये जो लाइफ लेसन्स है फ्रॉम आर हिस्ट्री एंड आर एपिक्स वी कैन कंसिडर देम एज आर फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। So at last, I would like to give it back to Jaideep that वो कुछ कहना चाहते हैं ये सारे mythology के ऊपर कुछ एक line। So please Jaideep।
तो thank you अम्लान मेरे को वापस देने के लिए, and मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, आजकल जितने भी emotional breakdown समय होते हैं उसके ऊपर एक line के ऊपर ज़रूर गौर कीजिएगा कि अगर पांडवों से विवशता आएगी तो हिस्से में श्री कृष्ण भी तो आएंगे। सो उसी हिसाब से आप अपने कर्म कीजिए, फल अपने आप मीठा मिलेगा। सो थैंक यू अम्लान, बैक टू यू।
थैंक यू जयदीप, और उन्होंने एक बहुत ही कमाल की लाइन बोली और ग्लैड टू हियर दैट, वो एक बहुत ही अच्छा लाइन है, बहुत डीप मीनिंग है उस लाइन का, वो श्लोक को भी डिस्क्राइब करता है वो कर्मण्येवाधिकारस्ते वाले श्लोक को। तो फॉर द ऑडियंस दैट्स फॉर इट टुडे, और ये माइथोलॉजी पार्ट 3 था जयदीप और मेरे बीच. आई होप दैट यू ऑल एंजॉयड दिस पॉडकास्ट एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग. थैंक यू.
Thank you.